मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं सीधे सीधे मुख्य विषय पर आ रहा हूं, लेकिन एक अलग ही विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं, और हो सकता है कि मेरा यह जो विषय है वो आपको रुचिकर न लगे, ये भी हो सकता है कि आपको बेकार सा लगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं वो आपके सिलेबस में नहीं है, और इस विषय को लेकर कभी कोई प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा, ना तो प्री में और ना मेंस में, इंटरव्यू का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो आपको भी लग रहा होगा कि फिर मैं ऐसे विषय पर बात क्यों कर रहा हूं जिसके बारे में एग्जामिनेशन में पूछा ही नहीं जाएगा। जी हां, मैं जिस विषय के बारे में बात करने जा रहा हूं वो विषय ऐसा है कि एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा उनके उत्तर आप तभी दे सकेंगे जब आप इस तरह के विषयों को अपने व्यवहार में लाएं, यानी कि ये फाउंडेशन है। आप जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं उसका फाउंडेशन है, उसकी नींव है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम इन बातों को नहीं समझ लेते हैं तब तक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी हमारे सही डायरेक्शन में नहीं हो पाती है। फिर चाहे हम कितना भी वक्त क्यों न लगा दें, कितनी भी बातें पढ़ क्यों न लें, शायद सफलता संदिग्ध ही बनी रहती है। तो दोस्तों, आज मैं इसी विषय पर आप सबसे कुछ बातें करने जा रहा हूं, और बहुत ही व्यावहारिक स्तर पर, मैं सैद्धांतिक बातें नहीं करूंगा। अभी दो तीन दिन से आप देख रहे होंगे कि जोशी मठ में जो अभी संकट आया है उसको लेकर के बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, एडिटोरियल कमेंट्स आ रहे हैं। आप टीवी के चैनल्स खोलिए तो उस पर भी खबरें आपको पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलेंगी। यानी यूं कह लीजिए कि जो इन्फॉर्मेशन है इसको लेकर के उसकी बम्बार्डिंग आपके ऊपर हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि आप इस बम्बार्डिंग से अपने को सुरक्षित कैसे रखेंगे, नंबर वन। नंबर दो, ये बम्बार्डिंग बेवजह नहीं है। मैंने अपने डेली ऑडियो लेक्चर में ही आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। तो आप इससे अपने आप को अलग भी नहीं रख सकते, तो फिर आप क्या करेंगे? इसी पर मैं तो आज बात करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, मैं आपको इसका उपाय भी बता चुका हूं, सुझा चुका हूं, याद करने की कोशिश कीजिए, और यदि आपने मुझे ध्यान से सुना होगा तो शायद आपने करना शुरू भी कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अब मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, रिमाइंड करा रहा हूं। दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, हमें चाहिए कि जैसे ही पता लगे कि ये इंपॉर्टेंट है तो सीधी सी बात है कि हम अपने रजिस्टर में, अपनी कॉपी में एक दो पेज उसके नाम से सुरक्षित कर लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें लगते हैं उन्हें हम नोट करते चले जाते हैं। शुरू में आप उसका क्लासिफिकेशन मत कीजिए, शुरू में आप सिर्फ पॉइंट्स, जो भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लग रही हैं, आप उन्हें नोट करते चले जाइए, बस इतना ही सफिशिएंट है। फिर जब वो घटना पूरी हो जाए तब फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किए हैं उनको ध्यान से पढ़िए और देखिए कि क्या आप इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्लासिफाइड करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि जोशी मठ में अभी जो संकट आया है, क्या संकट था, बहुत ही संक्षिप्त में, क्योंकि परीक्षा में यह तो नहीं पूछा जाएगा कि संकट क्या था, लेकिन अगर आपको एक कंप्लीट नोट बनाना है तो डेफिनेटली फिर तो उसकी जानकारी होनी ही चाहिए। इसके बाद उसके रीजन क्या थे, ये जो संकट आया है जोशी मठ में उसके रीजन क्या थे। जब आप जोशी मठ के रीजन के बारे में पढ़ेंगे, नोट कर रहे होंगे, या जो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, तो आप देखेंगे कि उसमें हिमालय के बारे में भी कुछ रीजन आपने कलेक्ट किए होंगे, ये पूरे के पूरे हिमालय क्षेत्र में क्या हो रहा है, यानी कि जो रीजन है अब वो आपके दो भागों में विभाजित हो गए। जोशी मठ में ये जो संकट आया है उसके क्या कारण हैं, और पूरे के पूरे हिमालय क्षेत्र में जो इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं उनके क्या कारण हैं। आपके पास कारण इकट्ठे हो गए, अलग अलग तरह के जो कारण होंगे, किसी कारण को रिपीट मत होने दीजिए, जो अलग अलग कारण हैं आप उन्हें नोट कर लें। आप पाएंगे कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है उसमें वो रिपीट हो सकते हैं, और अखबारों में जब आप पढ़ रहे थे तो बहुत ही रिपीट हो रहे थे, क्योंकि अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं अपने ढंग से लिख रहा हूं, तो मैं अपने कोई कारण नए तो लाऊंगा नहीं, तो बहुत से कारण समान होंगे। तो सीधी सी बात है कि आपको समान कारणों को दोहराने की जरूरत थोड़ी है, आपने कारण लिख लिए। फिर आप देखें कि इसको लेकर के शुरू से भी बातें हो रही होंगी, कुछ कमेटीज बैठी, कुछ भूवैज्ञानिकों ने अपने ढंग से बातें की, बताई, उनको नोट कर लीजिए कि भाई ये कमेटी बैठी, इसमें ये डिसीजन आया था, ये निर्णय लिया गया था लेकिन लागू नहीं हो पाया। अब आपका यह भी थोड़ा सा हिस्सा बन गया। अब आपका आखिरी बचता है कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, उसके बारे में भी बाकायदे आर्टिकल्स में सुझाव आ रहे हैं, एडिटोरियल कमेंट्स में सुझाव आ रहे हैं। आप उन सुझावों को नोट कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि जो आपके सुझाव हों वो बहुत ही सतही न हों, मतलब एक वैज्ञानिक सुझाव हों, व्यावहारिक सुझाव हों। आप इकट्ठे करते चले जाइए, जो भी मिल रहे हैं शुरुआत में तो आप उनको इकट्ठे करते चले जाइए। जब क्लासिफिकेशन करेंगे उनका तो बहुत सारे जो फालतू जैसे सुझाव होते हैं, जो अच्छे नहीं लगे, जो आपको प्रभावशाली नहीं लगते, उन्हें हटा दीजिए वहां से। क्योंकि कल्पना करके देखिए, व्यावहारिक स्तर पर सोच के देखिए, कल्पना भी मत कीजिए कि अगर एग्जामिनेशन में अगर हम सोचे कि इस पर किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे प्रश्न किस तरीके का भी हो, प्रश्न चाहे जिस तरीके का भी हो, होगा ज्यादा ज्यादा 250 शब्दों का, तो 250 शब्दों में आप क्या क्या लिखकर आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आप जो भी लिख करके आए वो बहुत ही सॉलिड हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो जब आप फालतू का कचरा इकट्ठा कर लेंगे और उन्हें उसे अपने दिमाग में डाल लेंगे तो कचरा निकलने लगेगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो बेहतर है कि जो फालतू की चीजें हैं, जो सामान्य तौर पर हर कोई कहता रहता है, उन्हें हटा दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई हर कोई कहता रहता है तो आप उसे हटा दें जबकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए कि एक सामान्य सी बात है कि भाई जो पहाड़ों पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, कहीं सड़कें बनाई जा रही हैं, कहीं सुरंगें खोदी जा रही हैं, कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहे हैं, कहीं ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, अब इसके निवारण के लिए कि इन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, तो हर कोई कहता है। इसका मतलब ये नहीं कि चूंकि हर कोई कहता है तो आप इसे किनारे कर दें, क्योंकि ये तो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि कैसे वहां की जो पृथ्वी है उसके बोझ को कम किया जाए, उसके डिस्टर्बेंस को रोका जाए कि आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसी बातों को नहीं हटाना है। फालतू की जो चीजें होती हैं आप उन्हें हटा दीजिए। अब आपके पास एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो गया। अब आप देखिए कि एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपने ये जो पॉइंट्स तैयार किए हैं ये हवा में तैयार नहीं कर लिए हैं, इनको तैयार करने के लिए आपको पढ़ना पड़ा है, राइट? आपको पढ़ना पड़ा है। तो जब आप पढ़ रहे थे तो पूरा आर्टिकल आपने पढ़ा ना, पूरा एडिटोरियल कमेंट आपने पढ़ा, तो पढ़ने की वो यात्रा आपने पूरी कर ली है। तो वो पूरी की पूरी जो पृष्ठभूमि है वो आपके दिमाग में है। इसीलिए मैं पॉइंट्स नोट करने की बात कह रहा हूं। उससे घबराइए मत कि अरे अगर मैं उसे डिटेल में नहीं लिखूंगा, यानी कि प्रोज के फॉर्म में पूरा नहीं लिखूंगा तो फिर वहां आंसर दे करके कैसे आऊंगा। नहीं, वो आप कर लेंगे, क्योंकि पूरी पृष्ठभूमि आपके दिमाग में मौजूद है। उससे घबराइए मत। और दोस्तों, अगर आप इससे भी घबरा रहे हैं तो फिर आपको अपने दिमाग को दुरुस्त करना होगा, अपने दिमाग को इस लायक बनाना होगा कि वहां आप अपनी तरफ से सोचकर आंसर दे सकें, तभी जाकर के मेंस क्वालिफाई हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब आप देखिए कि आप ढेर सारे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं जोशीमठ पर, है ना। मान लीजिए कि आज आप अखबारों में पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि जब पहला आर्टिकल आपने जोशीमठ की समस्या पर पढ़ा होगा, मान लीजिए कि वो 1000 शब्दों का था, तो आपको 15 मिनट लगे। अब अगर आप जब जोशीमठ का आर्टिकल पढ़ेंगे, वो भी 1000 शब्द का है, तो मुश्किल से आपके 3-4-5 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि सरसरी निगाह से आप देखते जाएंगे, अरे ये तो मुझे मालूम है, अरे ये तो मुझे मालूम है, अरे ये तो ऐसा होगा। दिमाग हमारा इस तरह से काम करता है, वो हमारी इस रूप में मदद करता है। तो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो केवल आप उन्हें नोट कीजिए। जैसे आज मैं आपको चेतन भगत का एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जो जोशीमठ की त्रासदी के ऊपर ही है। इसमें आपको 1-2 नए पॉइंट्स मिल सकते हैं, बाकी तो सब चीजें वही हैं। उन्होंने अपने ढंग से डिस्क्राइब किया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिस्क्राइब किया, इंटरेस्टिंग वे में लिखा है, तो ठीक है, उनको पढ़िए अगर आपको मजा आ रहा है, तो नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। इसमें अगर मैं आपकी जगह तैयारी कर रहा होता तो 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट मिले। पहला, उन्होंने ये कहा कि हमें नए हिल स्टेशन डेवलप करने चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे लोगों में पर्यटन के प्रति रुझान बढ़ रहा है, तो उधर से डाइवर्शन हो जाएगा, उनका बोझ कम हो जाएगा, जो कुछ हिल स्टेशन पर जो बोझ बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो भूटान है, इतने उसके पास कम संसाधन है, वो एक गरीब देश है अपेक्षाकृत, लेकिन वो बकायदे बहुत अच्छे तरीके से अपने को मैनेज कर रहा है। अगर भूटान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान दिलाया है। तो यहां से आपको 2 पॉइंट्स मिल गए और बस आप वो 2 पॉइंट लिख लीजिए, बस बात खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद दूसरी घटना आ जाएगी, जोशीमठ के बारे में बात होनी बंद हो जाएगी, आपका टॉपिक ये पूरा हो गया। बीच में यदि सरकार कभी कोई और घोषणा करती है वहां को लेकर के, हिमालय क्षेत्र को लेकर के, तो आप उसे नोट कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी पढ़ाई होनी चाहिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, दोस्तों इसी पैटर्न पर होनी चाहिए। जिसे आप कह सकते हैं कि थोड़ा पढ़ें, ज्यादा समझें और जो समझें उसे नोट कर लें। आज मैं आपको इसी तरह के कुछ और आर्टिकल्स प्रोवाइड कर रहा हूं, जैसे डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का आर्टिकल दे रहा हूं, खासकर हमारे प्रवासी भारतीयों के ऊपर है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको कुछ बातें मिल जाएंगी। जैसे एक बात आपको मिल जाएगी कि सबसे ज्यादा प्रवासी भारतीय किस देश में है, कुछ देशों के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि किसी भी देश में हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी संख्या 3-4% से ज्यादा नहीं है, लेकिन उनका जो वेटेज है वहां की पूरी राजनीति में और अर्थव्यवस्था में वो 30-40% के आसपास है। ये बात मुझे अच्छी लगी व्यक्तिगत तौर पर। इससे हमारा टैलेंट, हमारी जो श्रम शक्ति है उसका अंदाजा होता है, हमारी जो पहचान है उसका अंदाजा होता है। बात खत्म हो गई, इतना ही अपने आप में सफिशियंट है, उसे आप नोट कर लीजिए। प्रवासी भारतीय के बारे में भी मैंने कहा था आप सबसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते जा रहे हैं आप उन्हें नोट करते चले जाएं। आपका ये जो टॉपिक है धीरे धीरे अपडेट होता जाएगा और बकायदे ऑनलाइन लेक्चर्स इस पर अवेलेबल है ही। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस तरीके से आपको बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अपनी पढ़ाई को स्वरूप देना चाहिए। तो दोस्तों, आज मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। जो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स होती हैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। हमारी ऑफलाइन क्लासेज 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच होने वाली हैं। दोस्तों, इसके लिए विकास यादव जो जखेरा महेशपुर गांव के हैं, जिला कासगंज उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो विकास यादव, आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं यशवंत प्रजापति और बिंदन झा दिल्ली से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।